गाथा 91-91 उसकी टीका चलानी है। पेज नंबर 169 निकालो और वहीं से पढ़ते हैं। इस गाथा की उत्थानिका में मिल गया आचार्य अमृत चंद्र ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के आरंभ से ही बात उठाते हैं। उनका कथन मूलतः इस प्रकार है, कल अपन ने पढ़ा था ये, निर्माण पद दातार समता भाव को धारण करूं, ये पंक्ति थी वहां संस्कृत में, यह है ना, उपसमयामी सम्मम दत्तो निर्वाण संपत्ति, प्राकृत में ये है ना कि मैं उस समभाव को प्राप्त होता हूं। तो वहां साम्य भाव को प्राप्त होने की बात कही थी और यहां इस गाथा में अंत में वो साम्य भाव रूप जो श्रवण है, श्रवणत्व तो है, उसको मैंने प्राप्त किया है, ऐसा वो आचार्य कहते हैं। अभी आगे जो कलश आएंगे उनमें जरा और स्पष्ट घोषणा करेंगे कि वो समता भाव मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं शांति से अपने आत्मा की आराधना करता हूं। इस प्रकार पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा करके चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। इस प्रकार सातवीं गाथा में साम्य ही धर्म है, ऐसा निश्चय करके जिस काल में जो धर्म जिस परिणाम से हो परिणमित हो उसी में वह धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है। इस प्रकार आठवीं गाथा में जो आत्मा का धर्मत्व तो कहना प्रारंभ किया था और जिसकी सिद्धि के लिए प्राप्त करते मोक्ष सुख शुद्धोपयोगी आत्मा ये बात कही थी, है ना, ये पूरी टीका है काफी लंबी। इस प्रकार ग्यारहवीं गाथा में निर्वाण सुख के साधनभूत शुद्धोपयोग का अधिकार आरंभ किया था। मोक्ष का एकमात्र कारण शुद्धोपयोग है, इसलिए उसका अधिकार सबसे पहले साम्य भाव को धारण करना है ना, तो साम्य भाव को शुद्धोपयोग से ही प्राप्ति होती है। विरोधी शुभ अशुभ उपयोग को हे बताया, शुद्धोपयोग का वर्णन किया, शुद्धोपयोग के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले आत्मा के सहज ज्ञान और आनंद को समझाते हुए ज्ञान और सुख के स्वरूप का विस्तार किया। बोलेगा ना प्रपंच, प्रपंच माने विस्तार होता है और आजकल उसका बहुत खराब अर्थ होने लग गया है। अब किसी भी प्रकार शुद्धोपयोग के प्रसाद से उस आत्मा को धर्मत्व सिद्ध करके परम निष्प्रह आत्मतृप्त ऐसी पारमेश्वरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हुए कृतकृत्यता को प्राप्त करके अत्यंत अनाकुल होकर वेद वासना की प्रकटता का प्रलय करते हुए मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूं इस प्रकार रहते हैं। ये उत्थानिका है, ये उत्थानिका में वो कहते ये बात कह रहे कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को मैं पूरी करता हूं। देखो ये संस्कृत में है, ये सब जो मैंने पढ़े हैं ना, इन्हें एक एक शब्द से तुम मिलान करके देखना तो सब शब्द मिलेंगे कि इनमें पूरी ये पांच छह लाइनें हैं ना, इसमें उत्थानिका में इतनी लंबी टीका बहुत कम जगह देखने में आती है। एक आध जगह समय सार में आती है, एक आध जगह यहां आती, ज्यादा नहीं आती है, लेकिन ये गाथाएं वो हैं जो अंतिम गाथा है ना उसके पहले एक दफे टीका में की उत्थानिका में ही उनने वो सब पूरा विषय वस्तु जो हमने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में कही है उसको दोहरा दिया। एक तरह से उनने एक किताब खत्म कर ली, तीन किताबें भी लिख सकते थे वो, एक का नाम होता ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरे का होता ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और तीसरी का होता चरणान योग सूचक चूर्ण का। तीन किताबें सेपरेट भी हैं और तीनों एक में भी शामिल हैं, ऐसा समझ लो। इसी तरह समापन कर रहे हैं समापन यदि वो किताब की पूरी का नहीं होए ना तो इस तरह से नहीं करें आचार्य। गत पढ़ो अब गाथा भी।
जोड़े हैं दमो है दिट्टी आगम कुसलो विराच चरियम्मी अबुदेटो महप्पा धम्मोति विशेष दो समणो आगम कुशल द्रग मोह हत आरूढ़ हो चारित्र में बस उन महात्मन श्रवण को ही धर्म कहते शास्त्र में।
कितनी महिमा, उस श्रवण को ही धर्म कहते हैं, मुनिराज को ही धर्म कहते हैं। वे कहते हैं कि ये धर्म जा रहा है, कितनी भक्ति उनके अंदर में होगी। और वो स्वयं श्रवण हैं, वो उसी स्तर के श्रवण हैं, लेकिन उन्हें उसमें आत्म प्रशंसा नहीं लगती है। अब मैं तुम समझते हैं ये तो मैं कुंद कुंद के बारे में कह रहा हूं, उनके बारे में भी लागू हो जाए तो भी कोई ज्यादा विकल्प नहीं है, समझ ना। लेकिन कोई कहे अपने प्रशंसा अपने मुंह करते हैं तो अच्छी नहीं लगती है, तो कुंद कुंद के बारे में कह रहे। देखो वो अपनी गाथा है कौन सी, 66 65 66 कौन करुणा बुद्धि वाली, बोलो बोलो करुणा बुद्धि वाली है 66 है ना, 86 85 है ना। हाँ बड़ो पढ़ो।
आयथार्थ जाने तत्व को अति रति विषयों के प्रति और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह है।
मोह के चिन्ह बताया ना वहाँ, तो उसमें तो ये आगम की कुशलता बताई थी ना, आगे तो प्रेरणा दी है स्वाध्याय करना चाहिए। और दीर्घ मोह हत, जिन्होंने दर्शन मोहिनी का नाश कर दिया है, माने सम्यक दृष्टि है ना, और आरूढ़ है चारित्र में, ये करुणा भाव का अभाव में चारित्र में आरूढ़ से लिया, क्योंकि उसी को कहते हैं ये जगत के लोग करुणा भाव को चारित्र मान लेते हैं, तो वो कहते नहीं वो तो उसका अभाव रूप जो चारित्र है। ये तीन चीजें यहां फिर बताएं कि तीन चीजें जिसमें हों वो सच्चा मुनिराज है। एक तो उसे आगम में कुशल होना चाहिए, और आगम में कुशलता किसी भी कीमत पर नयों को समझे बिना नहीं पा सकती है। और ये बात तो तुम नए चक्र पढ़ते हो तो इसको तुम्हें बहुत अच्छी तरह से ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2000 वर्षों में नए चक्र नाम से जो ग्रंथ उपलब्ध हैं वो इतने पर्याप्त नहीं है। जैसे माइल्य धवल का क्या नाम है उसका, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र, तो उसमें 12 अध्याय हैं, उसमें नयों का वर्णन सिर्फ एक अध्याय में है। 11 अध्याय में तो द्रव्य गुण पर्याय इनकी चर्चा है, मतलब उन्होंने उसका नाम नए चक्र रख दिया, उनको इतना महिमावंत लगा वो, लेकिन वो वर्णन नहीं है। उसका अर्थ द्रव्य गुण पर्याय पर भी रखा जा सकता था, द्रव्य संग्रह भी रखा जा सकता था, मतलब कुछ भी, आप समझिए ना, उसमें जो वर्णन है वो पूरे नयों के लिए समर्पित नहीं है। सिर्फ 100 गाथाएं करीब होंगी, 100 होंगी, 90 होंगी, इतने करीब है बस, 400 गाथाओं में। और दूसरा है किनका, त्रिभुवन में चक्र है ना, देवसेनाचार्य का, जिनकी आलाप पद्धति है, तो वो भी ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। और कहा है, थोड़ा कहा मिलता है नयों का, अनागा धर्मामित में, वो भी एक पार्ट है, अनागा धर्मामित बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें है। तो इस फिर थोड़ा बहुत तोड़दमल जी ने नयों का वर्णन नहीं किया, उनने तो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग समझाना था उन्हें, तो उन्हें उसके बीच में निश्चय व्यवहार नए आ गए, नयों को मोक्ष मार्ग पर कैसे घटित करना, वहां ये बात है। वे बातें ही ऐसी करते हैं जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, और मोक्ष मार्ग का कारण है, हेतु है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। नए की बातें ही नहीं करते हैं, वे तो निश्चय व्यवहार से मोक्ष मार्ग पर घटित कर रहे हैं। इस तरह बहुत व्यवस्थित नहीं था, और जो भी था पठन पाठन में नहीं था, स्वाध्याय में नहीं था। जनता तो स्वाध्याय करती भी नहीं थी, लेकिन कोर्स में रख करके यूनिवर्सिटियों में भी, और अपने महाविद्यालय चलते थे ना, इंदौर का, मुरैना का, बनारस का, इनमें भी नयों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। बस तत्वासूत्रों में सात नए आ जाते थे, नयों के नाम पर सब उन्हीं को जानते हैं, और वो फिर राजवार्तिक में सर्वार सिद्धि ये भी कोर्स में थे ना, तो उनमें भी वही नए आ जाते। सब लोग ये समझते हैं नए तो सात होते हैं और बस वे ही नए हैं। अब इसमें तो अभी देखो जो नयों की चर्चा आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें उनका नंबर तो है, लेकिन बहुत बिल्कुल बाद में साधारण सा एक हिस्सा है वो, ये बड़ी बात नहीं है। तो इतने व्यवस्थित रूप से महाभाग से अपने को पास आ गया है। पूज गुरुदेव श्री के समय में भी गुरुदेव जब से नया चक्र नहीं आया था, तब उसके पहले वहां भी कुछ नहीं था। वहां के सब विद्वान भी नयों के बारे में जो कुछ जानते थे वो सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जितना आता है उतना ही जानते थे। मैं खुद अपनी बात कहता हूं कि निश्चय व्यवहार पर मैंने लिखा था एक पाठ, कौन सी पाठमाला में है, तत्व ज्ञान पाठमाला में होगा, वितरा विज्ञान पाठमाला में होगा, निश्चय व्यवहार नाम का पाठ लिखा था, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर वो ही अंश लिखा था, और उसी को हम सबके जगत के सामने प्रस्तुत करते रहते थे, और ज्यादा चर्चा उस पर नहीं होती थी, कोई भी नहीं करता था, ना वहां होती थी ना यहां होती थी। लेकिन अब जब बहुत झगड़े होने लग गए और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का निश्चय व्यवहार ने भी इतना जोर मारा कि निश्चय व्यवहार के नाम से पार्टियां बन गईं देश में, तब ये विकल्प आया कि भी नयों के बारे में गहरा अध्ययन होना चाहिए। ये उथला उथला अध्ययन है, वे निकाल के दूसरा बता देते हैं, ये तीसरा बता देते हैं, वे उसका एक बता देते हैं, वो एक वहां का बता देते हैं, यानी इतना ही पता नहीं था। जिनेन्द्र बर्णी जैसे विद्वान को, जिनेन्द्र बर्णी का नाम सुना, बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, उनने जब वो क्या नाम जिनेन्द्र सिद्धांत कोश लिखे, और उनमें जो निश्चय व्यवहार इनके शब्दार्थ लिखे ना, उन शब्दों को खोलते हैं, तो मैं खासकर व्यवहार के बारे में बताना चाहता हूं, तो उस व्यवहार शब्द क्रम निश्चय व्यवहार, संग्रह व्यवहार, और कहां कहां व्यवहार नय का प्रयोग होता है, वो दोनों को सबको मिक्सर करके ही लिख दिया, यानी उसमें भेद ही नहीं किया कि निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार और संग्रह व्यवहार वाले व्यवहार में कितना बड़ा फर्क है, वो तो भेद व्यवहार है, ख्याल है ना। और ये अध्यात्म के नए हैं, वो सिद्धांत के नए हैं। मैं स्वयं इतना अधिक परेशान हुआ जिनेन्द्र बर्णी की वजह से, घबराना नहीं, क्योंकि मैं उसका सहारा लेता था जिनेन्द्र सिद्धांत को उसका, तो जब व्यवहार नए की निश्चय की पर लिखूं तो व्यवहार की परिभाषा निकालूं तो उसमें दस लिखी हैं, दस में पांच ये हैं पांच वो हैं, तो बड़ी मिक्सचर हो गए कि हम वो टकराए आपस में। अब बैठे नहीं, अब अपन निश्चय पहला अपना पाठ लिखा था निश्चय व्यवहार, तो निश्चय व्यवहार पर घटित करें तो जो वो संग्रह व्यवहार वाला व्यवहार है वो बिल्कुल नहीं घटित नहीं हो गए, समझ आए ना। उसमें तो आता ही नहीं कि देह का शरीर का कहना, आत्मा देह को, आत्मा को मिक्सर को आत्मा कहना, व्यवहार नए से आता ना, व्यवहार में वो हुआ था जीवो देहो हवंती खलु एक को है, वो बातें ही नहीं है उसमें। उसमें तो सीधी वहां से लेके सारा लोक को संग्रह कर लिया ना महासत्ता में, और फिर वहां से भेद करते 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 बस एक पर्याय तक गए जो निश्चित न्याय का विषय है। वो इतना व्यवहार का पेटा है, और भेद करते गए भेद करते गए भेद करते गए, और फिर वो वहां से उसे संग्रह करना शुरू किया। तो संग्रह करते करते सारा लोकालोक जिसमें संग्रह हो गया, ऐसे संग्रह देगा वो, तो ऐसा ऐसा चलता है। ये जो व्यवहार है असद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार, इससे दूर का भी नाश्ता नहीं है, लिस्ता नहीं। बहुत परेशान हो गया, तब मैंने फिर आखिर गहरी स्टडी करी, तब मालूम पड़ा कि इसमें ये सारी गलती है। अब बर्णी जी तो इतने प्रतिष्ठित आदमी हैं, और वो सब लोगों ने बहुत सज्जनोत्तम भी समझते हैं, उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत अच्छा नहीं था। अब फिर जब मैंने वो दिव्यार्थक नए के 10 भेद आए, तुम्हारे आगे अभी नहीं आए, दिव्यार्थक नए के 10 भेद आए, तो उसमें शुद्धा शुद्ध का भेद किया कि शुद्ध कितने हैं और अशुद्ध कितने हैं। तो एक जगह उनने लिख दिया कि 4 शुद्ध हैं, 6 अशुद्ध हैं, दूसरी जगह लिख दिया 5 शुद्ध हैं और 5 अशुद्ध हैं, वहीं 2-3 पेज के आगे पीछे जो उनकी कहना। मैंने कहा गजब हो गया, ये क्या है, दो बातें मैंने देख निकाला, मैं निकला ना 4 निकले ना 5 निकले, 3 शुद्ध, 3 अशुद्ध और 1 परम शुद्ध, ऐसे 7 निकले। मतलब शुद्ध में क्या 3 निकले, कौन कौन मालूम है? अभी मान ला नाम मालूम नहीं होंगे, किताब खोलनी पड़ेगी, मैं बताता हूँ, रखो शांति से रखो, कोई बात नहीं। एक कर्म सापेक्ष है, कर्मोपाधि सापेक्ष, एक उत्पाद व्यय सापेक्ष और एक भेद कल्पना सापेक्ष, ये 3 तो अशुद्ध रखो रखो, और 3 तो अशुद्ध और 3 शुद्ध, भेद कल्पना निरपेक्ष, उत्पाद व्यय निरपेक्ष और कर्मोपाधि सापेक्ष निरपेक्ष, ये 3 शुद्ध, और तीनों से रह, तीनों से इनसे रहत मतलब परम शुद्ध, तो वे सब निकले। मैंने लिखा तो वो बर्णी जी के बिल्कुल खिलाफ गया पूरा। मुझे विकल्प तो बहुत था, क्योंकि बर्णी जी वो बहुत सज्जन थे, सोनगढ़ के विरोधी भी नहीं थे, पक्ष में भी नहीं थे, मध्यस्थ थे, लेकिन दोनों पक्षों में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। तो मैंने राकेश जी नागपुर वाले हैं ना, उनका लड़का शायद यहां बैठा होगा, हाथ उठाना, हाँ, तो उनको बुलाया, मैंने उनको भेजा कि सागर में थे वो बर्णी जी, तो मैंने इनको भेजा लेकर के कि बर्णी जी से कहना कि मैं अत्यंत विनय पूर्वक उनसे निवेदन करता हूं कि आपने जो ये भेद शुद्ध शुद्ध में किए हैं वो मैंने बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं उनसे सहमत नहीं हो सका। मैंने सहमत होने की बहुत कोशिश की, अपेक्षा निकाल कर कहीं ना कहीं से, लेकिन सहमत नहीं हो सका, और इनके संदर्भ में मैंने फिर ऐसा लिखा है, तो आप देख लो, और इसमें कोई भी करेक्शन करना हो तो आप बताओ तो हम करें। बर्णी जी को ये दिखाया जब जिंदा थे, बर्णी जी, जिनेन्द्र बर्णी की बात कर रहा हूं, तो उनने कहा कि देखो भाई, डॉक्टर साहब से कह देना कि भाई अपने हिसाब से ही लिखें, मैंने तो इंदौर में भाषण किए थे, प्रवचन किए थे, अब वो जो प्रवचन में जैसा आता है ऐसे होते हैं, हो जाते हैं, वहां किसी ने लिख लिए और लिख करके उसने छपा दिए, मुझे भी दिखाई भी नहीं, और छपा करके छप जा दिए, किसने, सेठ जी ने, वो है ना हुकुमचंद सेठ के लड़के राजकुमार सिंह वगैरह, उनने छपा दिए, और वो बात निकल गई समाज में। इसलिए वो जो निर्णय करें, अपना स्वतंत्र निर्णय करें, मेरे पर डिपेंड नहीं हूं, वो गलत होगा, मेरा गलत होगा, ऐसा उन्होंने माना। अब वो राकेश जी तो अभी मौजूद है ना, वो बता सकते हैं, उनसे सीधी बात हुई थी उनकी, माने स्टडी नहीं थी मैं।